सफर नंबर 61। दो चार लम्हे इसी हालत में गुजर गया था उनका, हजरत अल्लामा का सुकून हुआ और मौलाना ने फरमाया अल्लाह ताला आपकी आरजू पूरी करे। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा, मतलब यह था कि कोई और रुबाई याद हो तो अर्ज करूँ। मैंने कदर तामल किया और फिर मौके की रायत से वो रुबाइयाँ सुनाई जिनमें खिताब सुल्तान इब्ने सऊद से है। तो सुल्तान हजाजी मन फकीरम वल्ले दर ईश्वर मानी अमीरम जहाने तो जख्म ला इलाहा रस्त बियाबा बंगर बागोश जमीरम और तो हम आन में बगीर इस सागर दोस्त के बाशी था अब अंदर बरदोस्त सजूद नीस्त ए अब्दुल अजीज ए बरुविम इस मजदा खाक दर दोस्त। मेरा ख्याल था कि मुमकिन है यूं हजरत अल्लामा का जहन असूदा हो चुनचा। ऐसा ही हुआ, उन्होंने बासकून अपने अशार सुने, कभी कभी हुक्के का कश भी ले लेते। सिलसिला ख्यालात ना मरूम कहाँ था। मौलाना शायद कोई सवाल करना चाहते थे कि सुल्तान इब्ने सऊद का जिक्र जो आया तो बाजफाए बास गो इज नजद व इज यारा नजद अहबाब दिल्ली ने सुल्तान और इसकी हुकूमत पर नुकता चीनी शुरू कर दी। शायद इस ख्याल से कि हजरत अल्लामा भी इस सिलसिले में कुछ अर्शाद फरमाएं और सरजमीन अरब में जो सियासी इखलाकी इनकलाब आ चुका है इसके मतलब अपनी राय का इजहार करें। यूँ भी हिजाज और सुल्तान हिजाज का जिक्र आया और हरमैन शरीफ पर गुफ्तगू हो तो नामुमकिन है खाके बाग अरब के सियासी और इज्तमाही शऊन ज़ेर बहस ना आए। अहबाब दिल्ली ने अर्ज़ किया जज़ीरतुल अरब आज़ाद है लेकिन ये इसकी दाखली आज़ादी है या आलम इस्लाम के इतिहाद और इस्तक़लाल और सियासत बैनुल अक़वाम की राय से भी इसके कुछ मानी है वो उम्मत की बेदारी सफ़ा नंबर 62 और इसकी अहिया की तमीद है या बातकाज़ाए हालात एक वक्ती और मकामी तगैर। हज़रत अल्लामा खामोश थे, अहबाब दिल्ली ने सिलसिला कलाम और आगे बढ़ाया और कहा हमें सुल्तान के हुस्न इंतज़ाम का एतराफ़ है, राया के लिए इनकी खैर ख्वाही अदल और दाद कस्तरी का। अरब में हर तरफ अमन व अमान है, ना फितना फसाद है, ना जुराइम और ना फवाश और लोग हैं कि तहजीब हाजिर की आलाइशों तकल्लफ और तजन्ना से पाक बड़ी सादा अफीफ और आराम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस ज़िंदगी की तह में क्या वो अवामर भी कार फरमा है जिनसे फ़र्द की शख्सियत और जमात का करदार एक मखसूस सांचे में डलता है और जो गोया इस माशरे की जान है जिसके लिए उम्मत की तश्कील हुई। सऊदी इनकलाब इस निज़ाम इज्तमा व उमरान की तमीद तो है लेकिन जो इस्लाम के सामने है। हालांकि सुल्तान ने खुद ऐलान किया था कि अर्ज हिजाज में बादशाह कैम नहीं होगी, इसके आइंदा निज़ाम हुकूमत का फैसला आलम इस्लाम के मदोबीन पर है। हबाब दिल्ली ने कहा जज़ीरतुल अरब की तहीर बेशक एक ज़रूरी और मुकदस फरीदा है, बज़ाहिर इसकी तहीर होगी लेकिन इसकी हकीकी तहीर का वक्त कब आएगा। क्या तहीर अबारत है महज कब्बा शिकनी और बददाद से जैसा कि उलमाए नज़ समझते हैं या इसका मुतकाजी है कि इन सियासी इजतमाई और ज़हनी मुफासद का अजाला जो हमारे ज़वाल व इहतात का बाइस हुए और जिनसे अर्ज हरमैन भी महफूज नहीं रही। उन्होंने कहा सरज़मीन अरब में कि मोहब्बत वही और इस्लाम का मौलद व मंश है, इस निज़ाम मदनीयत की इब्तिदा क्यों नहीं होती जिसका दूसरा नाम है खिलाफत इस्लामिया और जो अगर कायम नहीं तो इस्लाम के असूल व अरकान भी महज अकायद बल्कि रस्म और रवाज मानकर रह जाएंगे। नंबर 1 कुंतम खैर उम्मत आखरत जद तलिल नास ता मरून लिल मरूफ व तनहून आनल मुनकर व नुमनून बिल्ला आल इमरान 110। नंबर 2 1925 में जब मक्का मुअज़्ज़मा में आलम इस्लाम की एक मोतमर का इजलास मुनक़द हुआ और सफ़ा नंबर 63 जिसमें मौलाना मोहम्मद अली का बिलखसूस ये इसरार था कि हमें चाहिए कि निज़ाम बादशाह को निज़ाम खिलाफत से बदल दें ताकि इस्लामी सियासत अपने सही मदार पर आ जाए। हजरत अल्लामा तो अहबाब दिल्ली की मारूजात जिनमें कुछ अफसोस कुछ शिकायत और तो कुछ तलखी का रंग पैदा हो रहा था खामोशी से सुनते रहे, कभी किसी बाप पर साथ भी कर देते। लेकिन मौलाना ने कहा अरबों को मुद्दत के बाद एक नई और पुरअमन ज़िंदगी मिली है दुनिया की दूसरी कुव्वत कौमों की तरह, इनकी भी एक फितरत है, ये फितरत बदलते ही बदलेगी। सरदस्त हालात ही ऐसे हैं कि इनकी निगाहें रद्दे बिदात और रकबा शिकनी से आगे नहीं बढ़ती। वक्त आने दीजिए वो मसाइल भी आप ही आपके सामने आ जाएंगे जिन पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं। नंबर 1 और नज़र पर हालात मानना पड़ता है कि मौलाना मरहूम का ये ख्याल गलत नहीं। उस पर अगर अर्ज किया गया कि अगर अरबों का अमल इस्लाम पर है तो ये फितरत आप ही बदल जाएगी, दीन ही तो फितरत इंसानी का मुहाफ़िज़ और सूरत गार है, मगर ये एक तरफ दीन से तमस्क और दूसरी जान استبداد اور ملوکیت، یہ دولت کی اجارہ داری اور غلامی، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یوں ناممکن ہے کہ عربوں میں وہ تغیر پیدا ہو جو کتاب و سنت کا مقصود ہے۔ کیا یہ امر بھی اجتہاد طلب ہے کہ اسلام کی روح غضب و تغلب کے خلاف ہے؟ اس میں کسی ایسے طرز معاشرت کی گنجائش نہیں جس سے انسان کے شرف اور احترام ذات کو ٹھوکر لگے۔ سلطان اس تحریک کے علم بردار ہیں جسے احیاء شریعت اور تجدید دین کا دعویٰ ہے۔ ان کے لیے یہ سمجھنا کیا مشکل ہے کہ اسلام ان سے کس طرز عمل کا طالب ہے؟ اللہ نے انہیں حکومت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ نمبر دو، فاقم و جگ للدین حنیفہ فطرات اللہ التی فطر الناس علیہا الروم 30۔ حضرت علامہ علام سے لیٹے ہوکے کے کش لگا رہے تھے کہ حضرت کے مولانا نے کہا، عرب صفحہ نمبر 64، کیا سارے عالم اسلام کی حالت افسوسناک ہے؟ دین کا فہم کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ ہمارے اور اسلامی دنیا میں بہم و ربط و ضبط کا کوئی ذریعہ باقی رہ گیا ہے تو حج، لیکن حج کی حیثیت بھی کیا ہے؟ ایک بے روح رسم و رواج یا زیادہ تر ایک روحانی فریضہ؟ بلکہ سچ پوچھیے تو بعض صورتوں میں محض تجارت، حالانکہ اگر حج سے معاشی سود و بہبود کا رستہ کھلے تو شریعت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ قرآن مجید نے تو پہلے ہی اس عمر کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ لوگ ان فوائد کو سمجھیں جو اس اجتماع میں پوشیدہ ہیں۔ کہنے لگے تو اور ہمارے علماء بھی شاید اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ حج سے مقصود ہے امت کا اتحاد، استحکام اور امت تعمیر، وحدت انسانی کی، یا یوں کہیے کہ اخلاقی اجتماعی ہر پہلو سے ایک عالمگیر معاشرے، بالفاظ دیگر انسانیت کبریٰ کی اساس۔ مولانا کے اس ارشاد پر میرا ذہن بے اختیار حضرت علامہ کی سربائی کی طرف منتقل ہو گیا جو ارمغان حجاز موجود ہے، لیکن جسے اللہ حضرت علامہ کی اس کفیت کے خیال سے جو ابھی تھوڑی دیر ہوئی ان پر تاری ہو چکی تھی، مجھے پیش کرنے کی جرت نہیں ہوئی، میں خاموش ہو گیا۔ نمبر ایک، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے بال جبریل۔ نمبر دو، فل یش حد منافع للناس الحج۔ نمبر تین، حضرت علامہ کا ارشاد ہے، حرم جز قبلہ قبل قلب و نظر نیست، طواف او طواف بام در نیست، میاں ماں و بیت اللہ رمزیست کے جبریل امی راہ ہم خبر نیست۔ مولانا برابر حج پر اظہار خیال کر رہے تھے، باتوں باتوں میں مولانا فاخر کا ذکر آ گیا۔ صفحہ نمبر 65، مولانا کہنے لگے کہ وہ سفر حج سے واپس آئے تو جو کوئی ملتا اس سے بڑے فخر سے کہتے، شاید اپنے نام کی رائٹ سے، کہ رمی الجمار میں میں نے شیطان کو وہ کنکریاں سیر کی کہ یاد ہی کرے گا۔ اس پر حضرت علامہ بھی بہت مقبوض ہوئے، بلکہ انہیں کچھ ہنسی بھی آ گئی جیسے حضرت فاخر سے شیطان کو پرانی چشمک ہو۔ مولانا نے اپنے سفر حج کا ایک اور واقعہ بھی بیان کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کے رفقہ سفر میں سے ایک اونٹھی پر سوار بڑے اطمینان سے قطع ثابت کر رہے تھے کہ دفتر انہیں سگریٹ کی طلب ہوئی، مگر انہوں نے سگریٹ نکالا سے سلگا کر کش لیا اور ادھر ترک سے وہ ایک درہ ان کے منہ پر پڑا، بیچارے دم بدم رہ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سعودی عرب میں سگریٹ پینا منع ہے، آئندہ جب کبھی سگریٹ دیکھتے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی۔ اس پر پرویز صاحب نے یہ کہا، وہابیت کی نفسیات، کسی نے کہا اس کی تاریخ بھی۔ نمبر چار، پرویز مرحوم آل آبادی تحریک خلافت کے سرگرم کارکن، وہابیت کی نفسیات یا دوسرے لفظوں میں وہ مذہبی رویہ جس کی نظر صرف ظاہر پر ہے اور اس کی حقیقت سے باخبر کے اعمال و عقائد کا سر چشمہ خارج میں نہیں ہے، داخل میں یعنی ہمارے ضمیر اور باطن میں ان کی پابندی پر اگر محض قانوناً اصرار کیا گیا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا جس کے لیے اعمال و عقائد کی ضرورت پیش آئی، نہ یہ ممکن کہ وہ ضبط و نظم متشکل ہو جسے انسان خود اپنے فہم و فراست کی روشنی میں بطبیب خاطر اس لیے اختیار کرتا ہے کہ یہ اس کے اپنے فائدے کی بات ہے۔ اعمال و عقائد کا تقاضا ہے کہ ضبط و نظم، اور ضبط و نظم لازمہ حیات، لیکن یہ تقاضا جب بھی پورا ہوگا کہ ہمیں حقائق کا شعور ہو، حقائق کا شعور ہے تو خود ہی آگاہی بھی ہے، اور خود آگاہی ہے تو تقوی کا شعور ہو، حقائق کا شعور ہے تو خود ہی آگاہی بھی ہے، اور خود آگاہی ہے تو تقوی بھی، ہمیں اپنے نفع و ضرر کا نقصان احساس رہے گا۔ خود آگاہی نہیں تو اعمال و عقائد کی کوئی روح ہے نہ ان کی پابندی کے کچھ معنی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظم و ضبط سے جو بازور قانون خارج سے عائد کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 66، تربیت ذات ہی کا امکان ہے نہ تعمیر شخصیت کا، نہ یہ ہوگا کہ فرد اور جماعت کے اقدامات जिंदगी की मुसलसल और पेश रस हरकत का साथ देंगे, हम इसका रुख इन मकासद की तरफ मोड़ सकें जो हमारे सामने है और जो हमने खुद अपने लिए तजवीज़ की है। बरक्स इसके कि जो तासब और तंग नजरी जबूद और कदामत पसंदी ही को तहरीक होगी, लिहाजा तासब और तंग नजरी जबूद और कदामत पसंदी की यही रवश है, रवश थी जिससे वहाबियत की तारीख में एक ऐसी खुशोनत और जारहियत पैदा हो गई कि इसने सबसे पहले आदमी इस्लाम ही को अपना हजरत बनाया। हालांकि ये अमर इस मुसल्ला अजीम की तहरीक इस्लाम के खिलाफ था जिससे सारी दुनिया इस्लाम मुतासर हुई और इसमें जिंदगी की एक लहर दौड़ गई। इस जहारियत का अवलीन इजहार शरफाए मक्का और फिर आगे चलकर दौलत उस्मानिया से आले सऊद के तसादम में हुआ। ये तो था वहाबियत की तहरीक का सियासी पहलू। बातबार अकायद देखा जाए तो इसने एक ऐसी फिरकाबंदी की शक्ल अख्तियार की है जिसकी निगाहें वहाबी बामुकाबला हनफी या इज्तिहाद बामुकाबला तनकीद सुन्नत बामुकाबला बिदअत के निज़ाम में चंद फिक्की मसाइल से आगे नहीं बढ़ी। लिहाजा इन अमूर में भी जिनसे उम्मत का मुस्तकबिल और हिफ्ज इस्तेहकाम वाबस्ता है वो सवादे आज़म से कट गई। यूं बाजुज अमाल व अकायद में एक सतही मुशाहबत के अलावा वहाबियत इस तहरीक इस्लाम में जिससे इसकी वाबस्तगी का दावा था बाहम कोई मुनासबत ना रही। शायद यही वजह थी कि बाद मौकों पर वहाबी हनफी निज़ाम में ज़ातियात का रंग पैदा हो जाता है और इन मसाइल में भी जिनकी हैसियत बागियत दर्जा अहम और असूली थी मनाजरा पसंद तबाह असल मौजू से हटकर तान व तशनी पर उतर आई। दरअसल यही बात हबाब दिली के दिल में खास तौर पर खटक रही थी। इन्हीं शिकायत थी कि शरीफ हुसैन के अखराज पर जब सुल्तान ने खुद ही यह तजवीज़ पेश की थी कि आलम इस्लाम के नुमाइंदे सफ़ा नंबर 67 आएँ और फैसला करें कि अर्ज इजहाज की आइंदा हुकूमत किस असूल पर कायम होनी चाहिए तो फिर इससे अगराज के क्या माने। जाहिर है ये एक ही असूल हो सकता था और वो जो मौलाना मोहम्मद अली के सामने था यानी खिलाफत जिस पर इस्लामी रियासत की तशकील हुई थी। लेकिन मोतबर मक्का की सारी कोशिश ये रही कि असल मसले से हटकर इजहाज में भी सुल्तान की मतलब अनान हुकूमत का जवाब पैदा किया जाए। चुनाचा ऐसा ही हुआ और थोड़े ही दिनों में सुल्तान मक्कल अल इजहाज व नज बन गए। उधर इस्लामी हिंद में जिसका सियासी मौकफ अल गौए खिलाफत के बायस पहले ही मखमल हो रहा था बिदात और दर रद्द बिदात कब्बा रेजी और कब्बा खेजी की बहसों से एक ऐसा हंगामा बरपा हुआ जिससे बड़ों की इज्जत भी महफूज नहीं रही और जिससे उम्मत के वकार को भी अखलाकन शदीद सदमा पहुंचा। माना कि इस्लामी हिंद से जो आवाज़ उठी बड़ी जोफ थी लेकिन थी तो मनशाए किताब सुन्नत के मुताबिक लिहाजा ज़रूरत थी तो इस अमर की कि इस सिलसिला में असूलन और अमलन एक ऐसी फ़जा पैदा की जाती जो हसूल मकसद में साजगार होती। लेकिन अफसोस के लिए आवाज़ सुल्तान की मुफाकत और मुखालफत के शोर में दब कर रह गई। नंबर एक वहाबी अकायद की जबरी इशात के बायस, नंबर दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जैसा कि हजरत इलामा की राय थी देखिए खुतबात छठा खुतबा, नंबर एक हवाला मजकूर ऊपर के हाशिए में, नंबर दो 1745 में शरफाए मक्का और 1803 में दौलत उस्मानिया से, नंबर तीन इसलिए कि बजाय आज़ादी इज्तहाद के इसने फिक्का हमरी की कोरा राना तलकीद अख्तियार की और फिर कदामत पसंदी का शिकार होगी। देखिए सिलसिला में खुतबात छठा खुतबा अल इज्तहाद फिल इस्लाम, नंबर चार ये सब वाक़यात 1925 के हैं देखिए जमीमा सफ़ा नंबर 68, नंबर पाँच 1926 में, नंबर एक 1922 में अता तारक के हाथों। मौलाना ने इन बातों को सुना तो फरमाया आप जो कुछ कहते हैं अपनी जगह पर ठीक है मगर सुल्तान की हुकूमत इन सब कोताहियों के बावजूद अरबों के हक में एक फाल नेक है। इन्हीं मुद्दत के बाद एक उम्दा क़यादत मिली है इसकी हालत हर एतबार से रोबा इसलाह है ज़रा हालात को बदलने दीजिए सऊदी हुकूमत की तंग नजरी आप ही आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी एक और बात थी जो मौलाना को सुल्तान की हमायत में पर मजबूर करती वो जो हजरत इलामा ने अपने रग में कहा है। नंबर दो बाहमदुल्ला के मौलाना के ये ख्याल भी जैसा कि वाकया से तस्दीक होती है सही साबित हुए जरा सी बात थी अंदेशा अजम ने जिसे बढ़ा दिया है फकत जेब दास्तान के लिए गो अजराए खैर ख्वाही ना के अजराए मजम्मत। मौलाना की नुक्ता नज़र इसके बरक्स ये था कि आलम इस्लाम में जहाँ कहीं और जो भी सियासी इखलाकी इंतशार रूनमा हुआ अजम के हाथों इन्हीं गोया अजम से के थी لہذا عربوں کی تنقید میں مخالفت ہو یا موافق، ان کے دل میں ہمیشہ عرب کی محبت موجے زن رہتی۔ وہ کہتے عالم اسلام کی اصلاح اور عجمی فتنوں کے ازالے کی کوئی صورت ہے تو یہی کہ عرب اس سر نو زندہ ہو، عرب سنبھل گئے تو اسلام کی حقیقی روح بھی جو طرح طرح کے اثرات سے دب رہی ہے پھر سے بیدار ہو جائے گی، اور مسلمان خود ہی اس رستے پر لوٹ آئیں گے جس سے مدت ہوئی وہ بھٹک گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج شریعت کی ظاہری اور سطحی پابندی بے نتیجہ نظر آ رہی ہے، اس کی حیثیت بھی محض ایک کشر کی ہے مغز سے خالی، لیکن یہ کشر بھی کوئی معمولی کشر نہیں، وقت آنے دیجئے اس کے اندر بھی حقیقی معنی پیدا ہو جائیں گے۔ یوں یہ صفحہ نمبر 69 سلسلہ گفتگو لفظہ نہ صحیح معانن حضرت علامہ ہی کے ان اشعار پر ختم ہو گیا، جن میں انہوں نے امرائے عرب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اے فواد، اے فیصل، اے ابن سعود، تا کجا برخویش پیچیدن چو دور، در جہاں باز آور آن روزے کے رکف، زندہ کر در سینہ آف سوزے کے رفت، خاک کے بختہ خالد دیگر بزائے، نغمہ توحید را دیگر سرائے، اے نخیل دشت تو بالندہ تر، بخیز اس تو فروق دغر۔ حضرت علامہ نے فرمایا، عرب اور عجم دونوں ہمارے ماضی کا تار و پود ہیں، ہم عرب کو نظر انداز کر سکتے ہیں نہ عجم کو، ہمیں چاہیے ماضی کی تنقید میں مستقبل کو فراموش نہ کریں۔ ارشاد ہوا، یوں دیکھنے میں مسلمانوں کی حالت بڑی پست ہے، انہیں نہ حال کا شعور ہے نہ ماضی کی خبر، نہ یہ کہ مستقبل کو ہم سے کس قسم کے عمل کی طلب ہے۔ حضرت علامہ رک گئے، پھر جب تنفس کی تکلیف کم ہوئی تو فرمایا، عالم اسلام کے حالات بدل رہے ہیں، جو بھی مسلمانوں میں اعلیٰ صلاحیتوں کی کمی نہیں، اسلام نے بھی ان کا رشتہ بہرحال قائم ہے، ان کی اصل ضرورت ہے قیادت، صحیح قیادت میسر آ جائے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر گفتگو کا رنگ بدلا، امم اسلامیہ کا ذکر ہونے لگا، ان کی گونا گو صفات اخلاق و عادات کا ترکوں نے اپنے آپ کو کس خوبی سے سنبھالا ہے، اخوان کی تحریک کس قدر امید افزا ہے، عربوں کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کے لیے ان کے نتائج کیسے درست اور خوشگوار ہوں گے۔ اس پر عرض کیا گیا کہ یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اسے کیا کیجئے کہ عالم اسلام میں کہیں اس زندگی کے اثار نظر نہیں آتے جس میں کتاب و سنت کی روح کار فرما ہو، ترک اور عرب اور ایسے ہی دوسری مسلمان قومیں تو خیر اپنی نسلی اور قومی عصبیت کے سہارے شاید سنبھل جائیں اور ایک گونا ترقی بھی کر لیں، مگر سوال ہمارا ہے ہندی مسلمانوں کا کہ باوجود بڑے بڑے دعووں، صفحہ نمبر 70 اور بڑی بڑی تحریکوں کے ہمارا کوئی نسبت عین ہے نہ لاہے عمل، ہمارے انتشار اور پر گندہ خیالی کا خاتمہ ہوگا تو کیسے؟ نمبر 1، سلطان کے زیر اہتمام بدوی قبائل کی آبادکاری کے لیے حضرت علامہ نے قدر توفق فرمایا، پھر ارشاد ہوا، مجھے تو مسلمانوں کے مستقبل سے قطعی مایوسی نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو قیادت، ہمارے دعوے اور ہمارے اقدامات ہی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس عمر کا ثبوت ہے کہ ہم میں ہر طرح کی استعداد موجود ہے، نہیں موجود تو قیادت۔ عرض کیا گیا، لیکن یہ بظاہر تو کوئی امکان نہیں کہ ہمیں صحیح قیادت میسر آئے اور ہماری صفوں میں جو انتشار رونما ہے اتحاد اور جمعیت سے بدل جائے۔ حضرت علامہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئے اور پھر بڑے پر یقین لہجے میں کہنے لگے، مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ ہمیں میں سے کوئی صاحب ایمان اٹھ کھڑا ہوگا اور اس کا خلوص اور دیانت ساری قوم کو ایک مرکز پر جمع کر دے گا۔ ارشاد ہوا، یہ محض خیال ہی خیال نہیں ہے، حقیقت ہے۔ نمبر 1، چنانچہ حضرت علامہ کی یہ پیشن گوئی حروف بہ حروف پوری ہوئی، ہم سب ہما تن گوش تھے، حضرت علامہ رک رک کر گفتگو فرما رہے تھے، کبھی کبھی ان کی آواز گلو گیر ہو جاتی، ان کے یہ الفاظ کی یہ محض خیال ہی نہیں ہے حقیقت ہے بھی ہمارے ذہن میں گھوم رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا، ہمارے مسائل کا ایک ہی حل، وہ ہے اتحاد، مسلمان متحد ہو گئے تو ان کی جدا گانہ قومیت تسلیم کر لی جائے گی، جدا گانہ قومیت تسلیم کر لی گئی تو ہم آزادی سے اپنا مستقبل تعمیر کر سکیں گے، کیا اسلامی ریاست قائم ہوگی؟ کیوں نہیں، بشرطیہ ہم اپنا اتحاد قائم رکھیں اور اس دعوے سے دست بردار نہ ہوں کہ ہندوستان میں ایک نہیں کئی قومیں بستی ہیں، ہندوستان بھی محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے۔ صفحہ نمبر 71، اور اس کا اتحاد بیرونی حملوں سے خطرے کا نتیجہ، اسلام بھی مذہب نہیں کہ اس کی تعبیر مذہب کے آن مہنوں میں کی جائے، اسی طرح اس کا تعلق صرف فرد کی ذات سے ہے، اسلام ایک نظام مدنیت بھی ہے جس کی نفی اسلام کی نفی ہے، ہم اس نظام مدنیت سے انحراف نہیں کر سکتے، یہی نظام مدنیت ہماری جدا گانہ قومیت کا راز ہے، انگریز تو اس نقطے کو سمجھتا ہے، ہندو اسے سمجھنا نہیں چاہتے۔ نمبر 2، اور مسلمان سمجھ بھی نہیں رہے تھے، بالخصوص جب نیشنلسٹ مسلمان हरार और कांग्रेस की तरफ से दारे जबियातुल उलमा इससे इनकार कर रही थी या इसकी ताबीर इस रंग में करती थी कि इसके लिए किसी जुदागाना कौमी तंजीम की जरूरत नहीं बजल इसके कि हम तरक्की पसंद दुनिया का साथ दें। अहबाब दिल खामोश हजरत अल्लामा के इरशादात सुन रहे थे। मैंने अर्ज किया ये अमर कि इस्लाम बजाय खुद एक निज़ाम मदनीयत है तो शायद मुश्किल से समझ में आए, मुसलमानों को खुद भी इसका पूरा पूरा शऊर नहीं, लेकिन अगर हमारी जुदागाना कौमीत का राज यही निज़ाम मदनीयत है और इस्लामी रियासत से मफकूद भी इसी का नफाज, तो क्यों ना कांग्रेस के इस ऐलान से फायदा उठाया जाए कि हसूल आज़ादी पर हिंदुस्तान में जो वफाक कायम होगा इसमें सूबे इस अमर के मजाज होंगे कि अगर चाहें तो मरकज से अलग हो जाएं, लिहाजा हम कांग्रेस के तरीके आज़ादी में इसका साथ दें और अगर कांग्रेस हमारी अक्सरियत के सूबों में हमें अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत ना करने दे तो मरकज से अलग हो जाएं, ये भी एक सूरत हो सकती है इस्लामी रियासत के क्याम की। इस पर हजरत अल्लामा ने कुछ तबस्सुम फरमाया और कहने लगे लेकिन तुम भूलते हो अव्वल तो कांग्रेस का ये ऐलान बजाय खुद वजाहत तलब है, कांग्रेस का मौकफ तो ये है कि हिंदुस्तानी एक जगराफियाई वहदत है लिहाजा इसमें बसने वाले एक कौम मजहब के अफराद का जाती मामला है, सियासत से बेतल्लक कांग्रेस कैसे गुवारा करेगी कि असूल आज़ादी सफा नंबर 72 के बाद वो इस वहादत से दस्तकश हो जाए जिस पर आज से इसरार है और जिसकी बिना पर वो मुसलमानों के जुदागाना मिली वजूद से इनकार कर रही है। फिर सूबों से कांग्रेस का मतलब सूबे हैं ना कि बाजबार मजहब, इनकी अलग अलग आबादी के मजहब की बिना पर इसका एक हिस्सा दूसरे से अलग हो जाए या किसी ऐसे निज़ाम मदनीयत के नफाज का मुतालबा करें जिससे दूसरों को इख्तलाफ हो, इरशाद हुआ सूबे मरकज से मुलहक रहें या बेतल्लक हो जाएं, इनका मदार सियासत बहरहाल वही लादीन सियासत होगी जो महज जुग्राफियाई कौमियत की कायल और इसे बनाए इजतमा समझती है, लिहाजा ना गैर मुसलम किसी ऐसे मुतालबे में जिसकी बिना पर इस्लाम पर है मुसलमानों का साथ देंगे ना इनके लिए ये मुमकिन होगा कि बहसीयत मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तान से अलग कर सकें। अगर कांग्रेस फिर वाकया समझती है कि हसूल आज़ादी पर मुसलमानों को हक होगा कि अगर चाहें तो अपने मखसूस निज़ाम मदनीयत के पेश नज़र मरकज से अलग हो जाए तो इसे आज कल हमारी जुदागाना कौमियत से क्यों इनकार है, क्यों ना आज ही से ये तस्लीम कर लिया जाए कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और इसके लिए सियासी समझ बूझ का तकाजा है कि इनमें बहम कोई समझौता हो जाए। हजरत इलामा गुफ्तगू करते करते थक गए थे, उन्होंने थोड़ी देर सताया कर फिर फरमाया सूबों में इस किस्म की जमातबंदी जरूर हो सकती है जैसी आज यूनियनिस्ट पार्टी ने कायम कर रखी है, लेकिन इसकी तरकीब भी वही होगी जो इस पार्टी की है यानी मुफाद पसंद अनासर का इतिहाद सियासी मुआशी बिना पर, चुनचा इस पार्टी के सामने सिर्फ जिम्मेदारों का मुफाद है। अरशाद हुआ जरा सोचिए तो सही, ये पार्टी बज़ाहिर मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है, इसमें अक्सरियत भी मुसलमानों की है, लेकिन इसके मुसलमान अनासर इस्लाम ही के नाम पर इस्लाम की नफी कर रहे हैं, मुसलमानों को बहसीयत मुसलमान ना इससे कोई फायदा पहुंच रहा है ना तकवीयत, हाँ फायदे में है तो चंद अहले गरज और। सफा नंबर 73 इनकी कोशिश भी यही अपनी जमात मजबूत करते चले जाएं। गुफ्तगू यूनियनिस्ट पार्टी पर आगे सवाल पैदा हुआ कि इस पार्टी का जोर कैसे टूटेगा, इसके पास हुकूमत है और हुकूमत के जोरों पर वो दूसरों को खरीद भी सकती है, चुनचा वाकया भी यही है कि यही दो चीज़ें इसकी ताकत का राज है, बड़े बड़े बेहिख्वाहान कौम जाती लालच में आकर इसी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। अरशाद हुआ अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो हुकूमत और रुपया ही वो चीज़ है जो बिलाकर इसके जवाल का मौजब होगा, जैसे जैसे यूनियनिस्ट पार्टी की गिरफ्त बढ़ती जाएगी वैसे ही उम्मत और मुस्लिमीन इससे बदजन होते चले जाएंगे, वो महसूस करेंगे कि इस पार्टी का वजूद इनकी इज्जत और खुददारी के रस्ते में हायल है, जैसे जैसे कांग्रेस मुतहद्दा कौमियत की आड़ में अपना दस्त तगल्लब दराज करेगी मुसलमान खुद ही इन जमातों के खिलाफ उठ खड़े होंगे जिनका दनस्ता या ना दनस्ता ख्याल है कि हिंदू और मुसलमान बहम मिलकर एक कौम बन सकते हैं। फरमाया कौमों की जिंदगी का राज इस जद्दोजहद पर मुजमर है कि अपना वजूद मिल्ली कायम रखें और नहीं भूलें कि इनका अपना नस्बुल आइन है, लिहाजा इस मौके पर जब ये कोशिश की जा रही है कि हमारी जुदागाना कौमियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए हमें अपने मौकफ का ऐलान दलेरी से करना चाहिए। हजरत अल्लामा ने फिर फरमाया दरअसल हमारी मुश्किल यह है कि हम अपना मिली नसब बुलायन सेहत के साथ मुतय्यन नहीं कर सके, हमारी नज़र ज़्यादातर अखलाकी और मजहबी मसाइल पर रही और हम समझे कि यही बामुकाबला दूसरों के हमारा मबादुल इम्तियाज़ है, इसमें कुछ हालात को भी दखल है, कुछ हमारे ज़वाल और तारीखी रवायात को। यही वजह है कि हम वो क़यादत पैदा ना कर सके जिसकी आज हमें ज़रूरत है। अरशाद हुआ हिंदी और उर्दू के नजह से लेकर जब 16 साल हुए मुसलमानों की आंखें खुली और उन्होंने सफ़ा नंबर 74 महसूस किया कि सर सैयद का ये कौल कि हमारा और हिंदुओं का रास्ता अलग अलग है हरूफ बहरूफ सही है कि हम एक दूसरे से मुफाहमत तो कर सकते हैं, हम सुलह व आपसी की ज़िंदगी बसर करें, हम एक दूसरे में मदगम नहीं हो सकते, सियासत के एक नहीं कई दूर दौर गुजर गए फिर भी मुसलमान नहीं समझे, और ये आए दिन के बलवों आया समाजी शुद्धि और संगठन की तहरीकों के बावजूद जिनसे हिंदू मुस्लिम इतिहाद और आज़ादी के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की तहरीक एक ख्वाब परेशान बनकर रह गई है कि इनका मिली नस्बुल ऐन क्या है, वो अपनी सियासत में क्या लाहे अमल अख्तियार करेंगे। बाएं अम्मा इनका ये एहसास कि हमारे और हिंदुओं के मद्मा नज़र में एक बुनियादी फ़र्क है कायम रहा, ये एहसास इस वक्त भी कायम था जब तुर्क मवालात की तहरीक जोरों पर थी, और इस वक्त भी जब कांग्रेस ने अलल ऐलान मुसलमानों की जुदागाना कौमियत से इनकार किया, जब नेशनल रिपोर्ट पेश की गई और जब इस सियासी महाज के साथ साथ कौमी तलीम और कौमी जबान के नाम से एक नया महाज हमारी तहजीब तमदन और हमारे अखलाक मुआशरत के खिलाफ कायम किया गया, यही एहसास था जिसने गोल मेज कॉन्फ्रेंसों में मुसलमान मुदबीन को बावजूद इख्तलाफ राय यकजा रखा, और कांग्रेस की वो साजिश जो नेशनलिस्ट मुसलमानों की आड़ में इसने हमारे जुदागाना वजूद मिल्ली के खिलाफ की थी नाकाम रही। फरमाया नेशनलिस्ट मुसलमानों का मौकफ बड़ा गलत है। नंबर एक और अमर वाकई भी ये है कि हजरत अल्लामा जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं इसमें किसी को ये ख्याल ही ना था कि इस्लाम एक निज़ाम मदनियत और इज्तमा व इमरान भी है, और आज भी कमोबेश यही कैफियत है। नंबर दो बसबब फ़र्का बंदी के। नंबर तीन हालांकि अमलन ना सही असूलन हजरत अल्लामा मुसलमानों की क़्यादत फरमा रहे थे। सफ़ा नंबर 75 इस पर जब ये अर्ज किया गया कि इसमें तो बड़ी बड़ी मकतदर और काबिल कदर हस्तियां शामिल हैं जिनके खलूस व दयानत और उसकी जमात कौमी से इनकार नहीं किया जा सकता, तो फरमाया तजब तो इन्हीं की समझ बूझ पर है, वो अपनी होशमंदी तजर्बे और सियासतदानी के बावजूद कौम को एक बड़े गलत रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं तो किसी बहुत बड़े खुश आइंदा फरेब में मुबतला हैं या फिर महज जज्बात के रौ में बह रहे हैं। अरशाद हुआ रहा यह सवाल कि इनमें उलमा का एक ग्रोह भी शामिल है, सो इसका जवाब ये है कि इस बात में अगरचा इनकी मखसूस फ़िरकाबंदी और अंग्रेज़ दुश्मनी को भी दखल है, लेकिन इसकी असल वजह है कि बरसों के तत्तल और सियासत से बेतरकी के खिलाफ वो रद्द अमल जो इन्हें मजबूर कर रहा है कि सियासी एतबार से भी अपनी हस्ती मनवाएं, लिहाजा वो ये समझे बगैर कि इन्हें जिस मनसब का दावा है इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, महज ऐसी जमात की हैसियत से अपना तशख्स कायम रखना चाहते हैं, लेकिन ये जमाती मुफाद की हैसियत से अपना तशख्स कायम रखना चाहते हैं, लेकिन ये जमाती मुफाद का इस दर्जा पास हमारे मिली मफाद के मुनाफी है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस का जिक्र आ गया है, हजरत अल्लामा की राय थी कि मुसलमान मंदोबीन में अगरचा कामल इतिहाद का बाएं हमा वो पूरे तौर पर कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सके, इनका इंतखाब इस बिना पर किया गया था कि हर फरीक की नियाबत हो जाए, लिहाजा इनमें बास की मौजूदगी गोया बराए बैयत थी। अरशाद का गनीमत है कि मुसलमानों का इतिहाद कायम रहा वरना अंग्रेज़ों और हिंदुओं दोनों की रेशा दवानियाँ जारी थी। क्या मैं इंग्लिस्तान की बातें होने लगी रुफ़काए सफ़र की, और सिलसिला में एक दिलचस्प वाक़या बयान फरमाया, अरशाद व लंदन से वापसी पर हमारा जहाज अदन पहुंचा तो मौलवी शफी दाऊदी अरशा जहाज पर खड़े गर्दोपेश के मनाजर का लुत्फ उठा रहे थे। इनके सफ़ा नंबर 76 हाथ में एक किताब भी थी जो इतफाकन समुंदर में गिर गई। मौलवी साहब परेशान हो गया, समझ में नहीं आता था कि क्या करें कि दफ्तर इनकी निगाह इन सोमाली लड़कों पर पड़ी जो छोटी छोटी पश्तियाँ लेकर इधर उधर घूम रहे थे ताकि मुसाफिर चाहें तो इन्हीं अपनी गोताखोरी के कतब दिखाएं। मौलवी साहब ने जो इन्हीं देखा तो समझे कि मुश्किल हल हो गई, चलाए और किताब की तरफ इशारा करते हुए लड़कों से कहने लगे या शेख जालिकल किताब, बेचारे अरबी तो जानते नहीं थे, या शेख और जालिकल किताब से काम निकल गया। लड़के इनके इशारे से समझ गया कि मतलब इस किताब से है जो सतह समुंदर पर तैर रही है और करीब था कि मौजों में गायब हो जाए। इस पर एक ने कश्ती से पानी में छलांग लगाई और किताब लेकर अरशा जहाज पर चढ़ आया। मौलवी साहब ने इत्मीनान का सांस लिया कि किताब में इनकी वाकया दिलचस्प था कि हम सबको हंसी आ गई। नंबर एक बहार में तरीके खिलाफत के पुरजोश रहनुमा और साबक हिंदुस्तान में मरकजी असम्बली के रुकन नंबर दो बलादे सोमालिया के रहने वाले बाहमद अलीला के सोमालिया अब अफ्रीका की आज़ाद इस्लामी रियासतों में शामिल हैं। हजरत अलामा भी शगुफ्ता खातर थे, उन्होंने हुक्के के दो एक कश लिए और कहने लगे, जुबान अभी इतिहाद का कितना बड़ा जरिया है। अफसोस है यूरोप के इस अस्तीला ने इस रिश्ते का भी खात्मा कर दिया है। कितने मुसलमान हैं जो अरबी जानते हैं और अपना माफी ज़मीर इसमें अदा कर सकते हैं। हालांकि अरबी हमारी बैन अल-अक़वामी ज़बान है, हमारे दीनी सकाफ़ती और अदबी राबते का एक अजीम सर चश्मा। परवेज साहब, शायद इस वक्त से जब हज़रत अल्लामा ने कांग्रेस की तरफ से दारुल उलमा की कुर्ता नजरी पर इजहार अफसोस किया था, मौका के मुंतज़िर थे। उन्होंने मौलाना सफ़ा नंबर 77 मौलाना अब्दुल कलाम की तफसीर कुरान का जिक्र छेड़ दिया और ज़ाहिर नेशनलिस्ट मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू होती तो मौलाना का जिक्र ज़रूर आता। इनकी तफसीर अगरचे बरसों के इंतजार के बाद शाया हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो तवक्कुआत पूरी ना हो सकी जो मौलाना के इल्म फजल से वाबस्ता थी। बिलखसूस इसलिए कि इल्म इस्लाम बामुकाबला इस्लाम और दीन बामुकाबला दीन की इस्तलाहें वाजे करते हुए उन्होंने इस्लाम की तबीर एक ऐसे रंग में की थी जिससे बजाय एक वाजे कती और मुहक्म दस्तूर हयात के दीन की हसीयत महज एक अकीदे एक नज़रिए एक मुजरद फिक्र और एक एहसास की रह गई थी। मौलाना के नज़दीक कुरान पाक की दावत यह है कि जुमला मजहब आलम एक दूसरे की सच्चाई का एतराफ़ करें, ये सब अपने अपने मजहब की हकीकी तलीमत पर कार बांध रहे ताकि वो सब ग्रोह बंदी जो शरा व मनहाज के इख्तलाफ ने पैदा कर रखे हैं कालदम हो जाएं और दुनिया समझ ले कि और दीन या सलाम का हकीकी मकसद क्या है। ये मकसद है खुदा परस्ती और नेक अमली। इसलिए निजात व सादत की इस की असास है हुसन एतकाद व हुसन अमल के साथ साथ तौहीद बारी ताला का इकरार। परवेज साहब ने कहा, वादत अद्यान का यही गलत तसव्वुर जो मौलाना ने इस तरह कायम किया सरचश्मा है कुरान मजीद की तफसीर का जो मौलाना ने फरमाई और जिससे ब्रह्मो समाज के नुक्ता नज़र ही की तायद होती है। मुसलमानों की दीनी असबियत को तो कोई तकवीत नहीं पहुंचती। मौलाना के अर्शादात को सही तस्लीम कर लिया जाए तो इस्लाम और गैर इस्लाम में कोई इम्तियाज ही बाकी नहीं रहता, ना अकीदा ना अमलन। मालूम होता है कि इनकी सारी कोशिश ये थी कि मजबूत कांग्रेस की हमायत का जवाब पैदा किया जाए ताकि हम अपने इस दावे से कि मुसलमानों की एक जुदागाना कौमियत है दस्तदार है जो मौलाना के अकायद मौलाना के ख्याल और मौलाना के नज़रियात में ये तब्दीली अफसोसनाक भी है और तजब अंगेज। नंबर एक, और इस इंतज़ार की कफ़ियत तासीर महरूम ने क्या खूब बयान की। सफ़ा नंबर 78, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो जिनके कलाम में है तफसीर सुनते थे लिख रहे हैं तफसीर सुनते हैं कि लिख रहे हैं रहे थे तफसीर। नंबर एक, तफसीर तर्जमातुल कुरान और जा बजा। परवेज साहब ने कहा, मौलाना गोया दबी जुबान से ये कहना चाहते हैं कि मजहब फर्द का ज़ाती मामला है, कौम का मामला मजहब से अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना की तफसीर शाया हुई तो रसाला मारूफ में इनके कलम से एक तवील तबसरा भी शाया था। नंबर दो, मुलहजा वो कांग्रेस के इजलास रामगढ़ में मौलाना का खुतबा सदारत और इनकी तसनीफ इंडिया विंस फ्रीडम। हजरत अलामा ने फरमाया, मदीर मुआरफ ने भी क्या इस सिलसिला में कोई राय जाहिर की है। नंबर चार, सैयद सुलेमान नदवी महरूम व मगफूर। परवेज साहब ने कहा, शुरू में तो सैयद साहब ने इस तबसरे की बड़ी तारीफ की और इन खतरात का इकरार भी किया जिनकी तरफ इसमें इशारा किया गया था, लेकिन तबसरे की दूसरी किस्त का वक्त आया तो उन्होंने दफ्तर अपनी राय बदल दी। क्यों? इस अजर में कि मौलाना की फजीलत इलम और बसीरत फिर दीन मुस्लिम है, वो बहुत बड़े सियासी और दीनी रहनुमा हैं, इनके ख्याल पर गिरफ्त की गई तो बहुत मुमकिन है और ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा हो जाएंगी। मसालत यही है कि सरदश खामोशी इख्तियार की जाए, मौलाना का शायद वो मतलब भी नहीं जो हम समझते हैं। नंबर एक, ये गलत फहमियों का उजर तो खैर यूं ही सी बात थी, असल हकीकत यह है कि इस वक्त हिंदी कौमियत सफ़ा नंबर 79 बरबनाए इश्तराक के वतन का तस्वर दिलों पर छाया हुआ था और मदीर मुआरफ का रुझान भी इसी तरफ था। इस वक्त कोई नहीं समझता था कि इस तस्वर के मुजमरात व मुल्तजमात क्या हैं, जज्बात की शिद्दत भी और अक्ल फिक्र जज्बात से दब रहे थे। इधर मौलाना ना सिर्फ हिंदी कौमियत के कायल और इसके बहुत बड़े दाई और अलमबरदार थे बल्कि बहुत बड़े आलम दीन और मजहबी पेशवा भी। लिहाजा इनके ख्याल को जेर बहस लाया जाता तो इसमें दो खतरे थे, मौलाना के इल्म फजल का इस्तखाफ और इस मौकफ की कमजोरी के हिंदी कौमियत के तस्वर को मजहब की तायद हासिल है। मुलाहजा हो इस सिलसिला में अरशाद अशारिया तर्जमानकुरान अरशाद हुआ, ये अमर बड़ा अफसोसनाक है कि किसी शख्स का इल्म फजल फजल या एहतराम साथ हमें हक कोई से बज रखे और वो भी इन मसाइल में जिनका तल्लक इस्लाम की बुनियादी तलीमात से है। चंद मिनट खामोशी रही शायद मौलाना की तब्दीली ख्यालात पर दिल अफसरदगी के बायस। परवेज साहब ने फिर कहा, बात लोग कहते हैं कि कुरान पाक ने सामी जहन की तर्जमानी की है, इनके नज़दीक सामी जहन कानूनी जहन है, लेकिन कानून का इंकशाफ तो बदतदरीज हो रहा है, इसका तल्लक हमारे इलम से है, अक्ल और तजर्बे से। जैसे जैसे हवाल में तब्दीली रुनमा होती है कानून आप से आप बदल जाता है। चुनाचा कितने हकायक हैं जो जमाना हाल के इश्तराकी इनकलाब से मुनकशफ हुए और जिनके पेशे नज़र मुखालफीन इश्तराकियत को भी बाज़ बातों में अपना मौक़िफ़ बदलना पड़ा। यूँ भी ख्याल है कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा और भी कई हकायक मुनकशफ होंगे और ऐसा हुआ तो कानून के बारे में भी हमारा रवैया बदल जाएगा। अंदरी सूरत हम क्या कहें, हमारी ज़रूरत क्या है, कानून या तसव्वुरात। परवेज साहब का सवाल अगरचा वाज़ेह नहीं था, इन्हीं शायद ख्याल नहीं रहा वो लफज सफ़ा नंबर 80 कानून को किन मामलों में इस्तेमाल कर रहे थे। इन्हीं उन्होंने इस बुनियादी फ़र्क को भी नज़रअंदाज कर दिया जो हकायक के तसव्वुर और इसके तमस्सक में है और जिससे हमारा ज़हन कानून की तरफ मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा ये बुत अगरचा साफ नहीं थी कि कानून से इनका मतलब क्या है और तसव्वुरात से क्या, फिर भी हज़रत अल्लामा इनका मतलब समझ गया। उन्होंने फरमाया ये कानून और तसव्वुरात की बात ज़रा समझने की है। बहरहाल हम आपकी ज़ुबान में कह सकते हैं कि कुरान में कानून भी है और तसव्वुरात भी। हज़रत अल्लामा इतना कहकर रुक गए जैसे ज़रा सुनना चाहते हों और वो उन्होंने अपने इस अरशाद की कि कुरान में कानून भी है और तसव्वुरात भी वजाहत नहीं फरमाई, लेकिन मेरी समझ में जो बात आई वो ये कि कुरान मजीद में वो सब कुछ है जिससे बेक वक्त हमारी रहनुमाई कानून और तसव्वुरात दोनों में होती है। बहर कैफ उन्होंने कदर तौकफ़ के बाद फिर फरमाया, इस मामले में काबिल गौर अमर यह है कि कुरान पाक ऐन फितरत है, लिहाजा फितरतुल्लाह का इंकशाफ जिस पर इंसान को पैदा किया गया अल कुरान ही के जरिए होगा। फिर ये फितरत इस निज़ाम हयात ही में मशहूद हुई जिसको इसने दीन कहा और दीन का तकाजा है वो अपने अहमाल व अकायद जो हर पहलू से ज़िंदगी को सहारा दे रहे हैं और जिनको इस्लाहतन शरीयत से तबीर किया जाता है। लिहाजा हम कहेंगे कि कुरान पाक में कानून भी है और तसव्वुरात भी। वो इंसान को तसव्वुरात की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी कानून की। नंबर एक, ज़िंदगी का तकाजा है कोई मुसबत तर्ज अमल, इससे और अमराओ नवाही की ज़रूरत है और अमराहो नवाही सर चश्मा में शराय जानी आइन व कानून का तसव्वुरात तो महज अकली अदारक है किसी हकीकत का, लेकिन अमल के लिए बेनतीजा। फ़र्ज कीजिए हम सामी और आर्याई जहन की तफरीक पर इसरार करते हैं, इस तफरीक को मान लीजिए तो कहना पड़ेगा कि आर्याई जहन के ने तसव्वुरात तो कायम किए हैं लेकिन अमल के लिए इसे कोई रास्ता ना मिला, बल्कि सच पूछिए